मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने कंप्लीट किया था, ध्रुव महाराज अपने घर से अपनी माँ की आज्ञा प्राप्त करके जंगल की तरफ निकल गए थे, जंगल की ओर निकल गए थे। तो उनकी माँ सुनीति ने जो उनको इंस्ट्रक्शन दिए महाराज ध्रुव को, वो वास्तविकता में ध्रुव के परम कल्याण के लिए थे, ध्रुव के आध्यात्मिक कल्याण के लिए थे। इसलिए उन्होंने बोला कि सुरुचि ने जो भी आपसे बोला है उसको मान के आप जंगल की तरफ जाइए। और ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे, तो अपनी माँ की आज्ञा पाके माँ उनको प्रणाम करके वन की तरफ चले गए। हालांकि ध्रुव को यहाँ पे पता भी नहीं था कि भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है, और ऐसा उल्लेख आता है कि वो जंगल में जाके अलग 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 जानवरों से पूछ रहे हैं कि भगवान विष्णु का किस प्रकार का रूप है, इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन आता है। और एक श्लोक आता है कि जब भगवान किसी भक्त के हृदय को, किसी व्यक्ति के हृदय में सिंसियरिटी देखते हैं, तो उसको प्रामाणिक गुरु भगवान भेजते हैं उसके पास। तो ध्रुव के साथ इसी तरह से हुआ, भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त नारद मुनि को ध्रुव के पास भेजा, उनको टेस्ट करने के लिए और गाइड करने के लिए। तो नारद मुनि जब ध्रुव के सामने आते हैं जंगल में, तो उनके सिर को सिर पे टच करके बच्चे को आशीर्वाद देते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं कि देखो क्षत्रिय स्पिरिट किस प्रकार से है, 5 साल के बच्चे के अंदर भी इस प्रकार से क्षत्रिय स्पिरिट है। क्षत्रियों का ये एक नेचर होता है कि उनकी प्रेस्टीज के ऊपर थोड़ी सी भी आंच आती है तो वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि क्षत्रिय इस प्रकार से, क्षत्रिय स्पिरिट के कारण 5 साल के बच्चे में भी इस प्रकार से स्पिरिट है। और फिर नारद मुनि उनको बताते हैं कि आप तो एक छोटे से बच्चे हैं, आपकी उम्र में तो बच्चे लोग एक्चुअली खेलना चाहते हैं, प्ले से अटैच रहते हैं, और चूंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई प्रशंसा या अपमान इसका कोई बोध नहीं होता है, इतनी छोटी अवस्था में आप तुम्हें प्रसन्नता या अपमान से इतना इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से नारद मुनि बताते हैं और तो बोलते हैं आपकी माँ ने इस प्रकार से आपको बोला, कुछ कठिन शब्द बोले तो ठीक है, आप छोटे बालक हैं, इतना सोचना नहीं चाहिए, उसके लिए आपको इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि आप अपना घर छोड़ के जंगल में आ जाएं। और अगर आपको इस प्रकार से इंसल्ट फील होता भी है तो भी आपको इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि भौतिक संसार में जो ये इंसल्ट है, जो भी संसार में हमारे पास आता है, वो वास्तविकता में हमारे खुद के कर्मफल है। तो नारद मुनि इस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं शास्त्र के सिद्धांत के द्वारा कि संसार में हमें जो भी मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए अगर आपकी माँ ने इस प्रकार से बोला। एक्चुअली नारद मुनि टेस्ट करना चाहते हैं कि ध्रुव कितने ज्यादा वो है, स्ट्रांग है अपनी डिटर्मिनेशन में, इतना वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो और आगे समझाते हैं कि संसार में जो भी होता है वो माया शक्ति, भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से होता है, इसलिए अपने माँ के आदेश के कारण आपको, आपने यहाँ पे आने का प्रयास तो किया है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज सूटेबल नहीं है भगवान को इस प्रकार से पाने के लिए, तपस्या करने के लिए आपकी एज सूटेबल नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े महान योगी मुनि भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भगवान को प्राप्त करना उनके लिए कठिन होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ये सफिशियंट एज है कि आप भगवान विष्णु को आपको पसंद करने का प्रयास करना चाहिए। आप ऐसा करिए कि अभी चले जाइए, जब आप बड़े होंगे उसके बाद फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी आप घर वापस चले जाइए और जो भी आपको मिला है वो भूल जाइए, जो भी आपको दुख हुआ है उसको भूल जाइए, छोटे बालक हैं आप इसलिए। और साथ साथ नारद मुनि शास्त्र के भी कुछ उपदेश उनको बताते हैं कि व्यक्ति को जो भी सुख दुख मिलता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो उसके ही कर्म फल है। मान लो आपकी इंसल्ट हुई, आपको ये समझना चाहिए कि आपको आपके कर्म फल के कारण आपको ये दुख मिला, तो इस प्रकार से आप इस दुख को पार कर जाएंगे। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से बोल के ध्रुव महाराज को टेस्ट कर रहे थे कि कितने सिंसियर है वो भगवान का, भगवान को प्राप्त करने के लिए। जब ध्रुव ने इस प्रकार से नारद की इंस्ट्रक्शन सुनी तो ध्रुव महाराज फिर बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वास्तविकता में हमें बहुत कृपा की, अच्छा गाइडेंस देके, अच्छा डायरेक्शन प्रदान करके, और आपके जैसे साधु जो है वो इस संसार का कल्याण करने वाले हैं। बट मैं जो हूं, मेरा स्वभाव इस प्रकार से है कि आपके जो ये वाले निर्देश हैं, इन निर्देशों को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा अपनी अज्ञानता के कारण। आप समझ सकते हैं कि मेरे पास इतनी अज्ञानता है कि मैं आपके निर्देशों को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, और ये मेरे रजोगुण के कारण भी हो सकता है, और इस इंसिडेंट के कारण कि मेरी माँ ने मुझे इस प्रकार से बोला, सौतेली माँ ने, इसके कारण मेरे मन में कोई शांति नहीं है, और आपके जो निर्देश हैं वो केवल शांतिपूर्ण अवस्था में ही समझे जा सकते हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपके निर्देशों को समझ पाना। और मेरा हृदय जो है वो एक मिट्टी के बर्तन के जैसा है, एक बार मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से मेरी सौतेली माँ ने जो मुझे बोला है उसके कारण मेरा हृदय टूट चुका है। अभी मैं इतना ज्यादा दुखी फील कर रहा हूँ कि मैं, आप जो बोल रहे हो मेरे हृदय में जा ही नहीं रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मैं उसको क्यों क्यों स्वीकार करूं। तो इससे मुझे लगता है कि आपके जो निर्देश हैं वो निर्देश एक्चुअली ब्राह्मणिकल स्पिरिट के लोगों के लिए हैं, जो ब्राह्मण है उनके लिए ये निर्देश। तो ऐसा जब नारद मुनि ने सुना तो नारद मुनि समझ गए कि ये बालक भगवान विष्णु के को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड है, और नारद मुनि ने उनको बहुत कृपा की। और ध्रुव महाराज ने यह भी बोला कि अगर आप मेरे हिसाब से निर्देश देना चाहते हैं जो कि मुझे सूट करे तो कृपया करके मेरे ऊपर कृपा करिए, क्योंकि आप तो पूरे ब्रह्मांड में सभी को जानते हैं, आप जानते हैं किस व्यक्ति को किससे बेनिफिट मिलेगा, तो मेरी इच्छा को पूरा करने में आप मदद करें। फिर नारद मुनि ने उनको गाइड करना प्रारंभ किया कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि इतनी कम उम्र में तुम्हें भगवान को प्राप्त करने की इतनी ज्यादा इच्छा है, इतनी तीव्र आकांक्षा है, और आपकी माँ ने आपको जो भक्ति का रास्ता प्राप्त करने का बोला है उसी रास्ते को आप पालन करो। यहाँ के पास में, इस जहाँ पे हम हैं इसी स्थान के पास में मधुवन एक जगह है। तो नारद मुनि और ये ध्रुव महाराज का जो मिलन हुआ था वो एक्चुअली ब्रजमंडल के अंदर हुआ था, मथुरा के पास में एक विश्राम घाट जगह है, विश्राम घाट के पास में ध्रुव टीला है। अगर ब्रजमंडल परिक्रमा में जाएंगे तो मथुरा, मथुरा की परिक्रमा में आता है ध्रुव टीला। तो उस जगह पे नारद मुनि और ध्रुव मिले थे, और उसके पास में मधुवन है, मथुरा से 4 किलोमीटर दूर मधुवन है। तो नारद मुनि ने ध्रुव से बोला कि आप मधुवन जाइए, मधुवन यमुना के किनारे है, और मधुवन भगवान को इतना प्रिय है कि कोई अगर मधुवन में जाता है तो भगवान के क्लोज पहुंच जाता है, क्योंकि मधुवन एक्चुअली ब्रजमंडल का हिस्सा है, वृंदावन फॉरेस्ट का हिस्सा है। तो नारद मुनि ने उनको गाइड किया कि आप मधुबन जाइए, और जो लोग कुछ भी चाहें, चाहे वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कुछ भी चाहें, परंतु भगवान विष्णु के पास जो जाते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप सफल होंगे आपकी इच्छाओं की पूर्ति में, और मधुबन में जाके यमुना नदी में दिन में 3 बार स्नान करिए, और अष्टांग योग करने के जितने साधन है उनको स्वीकार करिए, और अष्टांग योग को सिद्ध करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। तो ये ध्रुव महाराज का गुरु मंत्र है, नारद मुनि ने उनको बोला कि आप इस मंत्र से भगवान की प्राप्ति करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अष्टांग, पहले के समय में भी लोग अष्टांग योग करते थे, परंतु अष्टांग योग जो है वो भक्ति का हिस्सा होता था, अष्टांग योग से वो अपने ब्रीदिंग के द्वारा मन को नियंत्रित करते थे और आसनों के द्वारा शरीर को नियंत्रित करते थे, और इस प्रकार से फिर ध्यान में बैठ के भगवान के नाम का जप करते थे, भगवान के नाम को मेडिटेट करते थे। सतयुग में भी वो क्रिया थी, ऐसा नहीं कि केवल कलयुग में नाम कीर्तन होता है, हर अवस्था में नाम कीर्तन शक्तिशाली होता है। सबसे शक्तिशाली नाम कीर्तन हर युग में होता है, परंतु कलयुग में लोग और कुछ तपस्या कर ही नहीं पाते हैं, बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए लोग नाम को स्वीकार करते हैं। तो नारद मुनि ने इस प्रकार से जब बोला, और नारद मुनि ने साथ साथ भगवान का डिस्क्रिप्शन भी बताया कि भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा है, और भक्त जब उस चेहरे को देखते हैं तो भगवान का चेहरा एक्चुअली एटर्नली ब्यूटीफुल होता है। भौतिक संसार की जो ब्यूटी है वो आती है वो जाती है। बहुत सुंदर पुरुष, बहुत सुंदर स्त्रियों को आप देखेंगे, जब युवा अवस्था होती है तभी सुंदरता होती है, जैसे जैसे युवा अवस्था ढलने लगती है 40 ईयर्स, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स, तो उनकी सुंदरता भी चली जाती है युवा अवस्था के साथ साथ। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक सुंदरता जो है, आत्मा की सुंदरता और भगवान की सुंदरता कभी नहीं जाती, उसके अलावा जितने भी वस्तु है सब संसार में क्षीण हो जाती है, संसार में उनका विनाश हो जाता है। तो भगवान की आंखें और उनके होंठ पिंक कलर के हैं, और ये डिस्क्रिप्शन भागवत में कई जगह आता है, भगवान के शारीरिक सौंदर्य का डिस्क्रिप्शन इसी कारण से आता है, जिससे कि जितना भक्त उसके बारे में सुनेंगे उतना भगवान के शरीर पर मेडिटेट कर सकते हैं, भगवान के दिव्य शरीर पर मेडिटेट कर सकते हैं। इसी कारण से शास्त्र में कई बार ये डिस्क्रिप्शन आता है। ये डिस्क्रिप्शन हमने पहले कैंटो, दूसरे, तीसरे, चौथे कैंटो, हर जगह पे हमने इस डिस्क्रिप्शन को सुना है। तो नारद मुनि फिर से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भगवान का स्वरूप बिना किसी डिफेक्ट के है, और भगवान हमेशा नव यौवन है, भगवान की उम्र कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान बुढ़े हो गए। ब्रह्मा जी की एज में ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी की एज में लोगों को प्रतीत होता है, और ब्रह्मा जी की फोटो भी इस प्रकार से बनाई जाती है, परंतु भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। और भगवान की आंखें उनके होंठ पिंकिस कलर के हैं। पिंक कलर को डिस्क्रिप्शन हो सकता है जैसे जब हम, आपने देखा होगा सूरज के उगने के पहले जब लालिमा आते हैं आकाश में, आकाश हल्का सा लाल हो जाता है और उसके बाद सूर्य का उदय होता है, तो भगवान के होंठ उसी प्रकार से पिंक कलर के हैं, उससे तुलना की जा रही है। और जो भी भगवान के शरण में आते हैं भगवान उनको हमेशा संपूर्ण तरीके से रक्षा प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान हमेशा शांत हैं और उनको देखना नित्य उत्सव के समान है। भगवान के शरीर का एक अंग को भी अगर कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहे तो अनंत समय तक मेडिटेट कर सकता है। नित्य नित्य नव यौवन, श्रीमद् भागवत में 12वें अध्याय में 50वां श्लोक आता है कि मनसो महोत्सवम, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, स्वरूप को देखना हमेशा माइंड के लिए महोत्सव जैसा होता है। इसी तरह से भगवान जब द्वारका में जाते थे अपने महल से कोर्ट में जाते थे, सुबह के समय जाते थे, शाम को वापस आते थे, तो उसमें डिस्क्रिप्शन आता है नित्यम निरीक्षमाणा नाम तदपि द्वारका उपस्थम, जो द्वारका की स्त्रियां थी, द्वारका के जो लोग थे, वो नित्य भगवान को देखते थे, सुबह देखते थे, शाम को देखते थे, दो टाइम देखते थे, परंतु कभी भी उनको ऐसा नहीं होता था न वित्तम्यन्ति, कभी भी वो संतुष्ट नहीं होते थे, उनको तृप्ति नहीं मिलती थी, क्योंकि भगवान के अंग, एक एक अंग जो है वो अनंत सुंदरता के समान है, अनंत सुंदर है। तो नारद मुनि ने ये डिस्क्रिप्शन बताया, जिसको सुन के ध्रुव महाराज भगवान विष्णु के प्रति और ज्यादा उनकी रुचि और आसक्ति बढ़ने लगी भगवान को प्राप्त करने के लिए, और नेचुरली ध्रुव महाराज के मन में प्रश्न आया कि कैसे उनको प्राप्त करेंगे। तो नारद मुनि ने बताया कि सामान्य योगी भगवान को, जो भी वास्तविक योगी है, भगवान के दिव्य रूप की सेवा करते हैं और भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित होते हैं, उस परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, और भगवान के रूप पे ध्यान करने के साथ साथ भगवान के नाम का जप करते हुए नाम पे ध्यान करने से शुद्ध योगी भगवान को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए और भगवान का मधुवन में जाके यमुना की मिट्टी से भगवान के विग्रह का निर्माण करिए। इस मंत्र का जप करते करते शास्त्र के आधार पे भगवान की सेवा करिए। भगवान का विग्रह जो है वो अलग अलग वस्तुओं से बनाया जा सकता है, जैसे मतलब मिट्टी से बनाया जा सकता है, अष्ट धातु से बना सकते हैं, मेटल से बना सकते हैं, लकड़ी से भी बनता है और पत्थर से बनता है, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से बनता है। चूंकि ध्रुव महाराज के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी और तपस्या जंगल में कर रहे थे, इसलिए नारद मुनि ने बोला कि आप जस्ट यमुना की मिट्टी लेके उससे भगवान के विग्रह बना के उसकी सेवा कर सकते हैं। और क्या क्या करना है कि भगवान की सेवा करते समय उनको शुद्ध जल ऑफर करना है, साथ में जो भी फल फूल जंगल में मिलते हैं वो ऑफर करिए, सब्जियां जो भी वहां पे अवेलेबल है वो ऑफर करिए, और तुलसी पत्ती भगवान के लिए पॉसिबल अगर पॉसिबल है तो ऑफर करिए, क्योंकि तुलसी को भगवान बहुत पसंद करते हैं। और साथ साथ तुलसी के अलावा जो नई नई घास उगती है उसको भी भगवान को ऑफर करना है, करना चाहिए। और जब और नारद मुनि बताते हैं कि अगर जंगल में रहते हुए ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो फिर मन में भगवान का ध्यान करिए और भगवान का विग्रह मन में बनाइए और मन में उनकी मानसिक पूजा करिए, ये लास्ट स्टेप है। अगर सामने कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो फिर भगवान की मानसिक पूजा की जा सकती है। तो डीटी वर्शिप के साथ साथ इस मंत्र, जो मंत्र मैंने आपको दिया है उसके ऊपर ध्यान करिए और भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करिए, किस प्रकार से भगवान अलग अलग अवतारों में आए हैं। अभी ये प्रश्न आ सकता है कि ध्रुव तो 5 साल के बच्चे हैं, उनको कैसे पता चलेगा भगवान की लीला है। नारद मुनि उसका आंसर देते हैं कि भगवान की जब आप ध्यान करना प्रारंभ करेंगे तो भगवान की कृपा से भगवान की लीलाएं आपको आपको स्फुरित होंगी। तो जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा में सिंसियरिटी से लगता है उनको उस व्यक्ति की इच्छा के आधार पर भगवान उसको रिवार्ड करते हैं, उस व्यक्ति को भगवान आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करने के बाद ध्रुव ने नारद मुनि को के परिक्रमा की और उनको प्रणाम करने के बाद मधुवन, जो कि मथुरा के पास में आता है, मधुवन के नाम से ही मधु नाम आया है और मधु से मथुरा नाम आया क्योंकि वृष्णि वंश में एक राजा मधु थे और उस वंश में भगवान कृष्ण आते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम माधव भी कहलाता है। जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र का एक नाम राघव है क्योंकि वो रघु वंश में आते हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण चूंकि मधु वंश में आते हैं इसलिए उनका एक नाम है माधव। माधव शब्द के और मीनिंग भी हैं। माधव शब्द का मतलब जो माँ के पति है, मतलब लक्ष्मी के पति, वो माधव कहलाते हैं। साथ साथ माधव स्प्रिंग सीजन को भी बोला जाता है, तो वृंदावन में मधु मधु सीजन जो है, मधु का जो समय है वो समय भगवान को प्रिय लगता है इसलिए उनको माधव बोला जाता है। तो मधुवन की तरफ गए और मधुवन में विशेष चीज है, क्योंकि मधुवन भगवान का नित्य लीला स्थलित है इसलिए मधुवन में भगवान के चरण चिन्ह कई जगह पे अंकित रहते हैं। तो ध्रुव महाराज वहां पे गए और ध्रुव महाराज के जाने के बाद नारद मुनि ने सोचा कि बच्चा तो अभी सेफ है, परंतु कहीं ऐसा नहीं हो कि पिता चिंतित हो, इसलिए नारद मुनि ने सोचा कि अभी उत्तानपाद के पास जाके बताना चाहिए कि ध्रुव के साथ क्या चल रहा है। जब उत्तानपाद के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उत्तानपाद ऑलरेडी कुछ दुख अवस्था में है और नारद मुनि को जैसे ही वो देखते हैं तो उत्तानपाद एकदम अपने आसन से उठ के खड़े हो जाते हैं और नारद मुनि को प्रणाम करते हैं। उनके चरणों को पाद प्रक्षालन करने के बाद जब बैठते हैं तो नारद मुनि फिर उत्तानपाद से पूछते हैं कि आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दुखी हैं, आपको कुछ आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ऐसा लग रहा है आपका मन में कोई चिंता है, आप क्या ऐसा क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, या कुछ आपने ऐसा किया जिसके कारण आपको पाप लगा है, कोई भी ऐसी चीज हो तो आप मुझे बताइए। और फिर राजा ने बताया कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि के प्रति ज्यादा आसक्त होने के कारण मैं इतना ज्यादा पतित हो गया कि मैंने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, मेरा बच्चा मेरे गोदी में बैठना चाहता था परंतु मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, और अभी ऐसा हो गया है कि वो बच्चा है मेरा एकदम कमल के समान कोमल था परंतु वो राज्य छोड़ के जंगल में चला गया है और मुझे नहीं पता कि जंगल में वो जीवित भी बचा है कि नहीं, हो सकता उसको पशु पशुओं ने जंगली पशुओं ने मार डाला हो और वो इतना कोमल था जंगल के कठिन रास्ते पे वो कैसे जाएगा। तो इस तरह से इतना बोलने के बाद महाराज उत्तानपाद रोने लगे, उनको ये दुख हुआ कि मैंने अपने बच्चे को पूरी तरह से इग्नोर किया और मेरे इग्नोर करने के बाद के कारण मेरे बच्चा अभी पता नहीं किस अवस्था में है, उसके साथ क्या हो रहा है। और इतना जब वो रोने लगे तब नारद मुनि ने बोला कि राजन आप चिंता मत करिए अपने पुत्र के लिए, क्योंकि उसको भगवान भगवान विष्णु ने उसको प्रोटेक्ट किया है, उसको सुरक्षित प्रदान किया है। यद्यपि आपको यह चीज पता नहीं है, परंतु आपका पुत्र ऑलरेडी पूरे ब्रह्मांड में फेमस हो चुका है। आपका पुत्र भगवान मधु जंगल में जाके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, और ऑलरेडी पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग आपके पुत्र को के बारे में जानते हैं, आपके पुत्र की ग्लोरीज को देख रहे हैं। और आपका पुत्र इतने महान कार्य करेगा कि आपके पूरे वंश को वो फेमस कर देगा, और जो महान महान ऋषि और राजाओं के लिए भी वो कार्य कठिन होगा, और बहुत जल्दी आपका पुत्र वापस लौटेगा अपने कार्यों को पूरा करने के बाद। और वो बताते हैं कि केवल उसकी नहीं, उसके साथ साथ आपकी रेपुटेशन भी बहुत पूरे संसार में फैल गई है कि आपके पास आपका पुत्र इतना महान है। इस प्रकार से आपकी रेपुटेशन पूरे संसार में फैल गई है। और जब उत्तानपाद ने इस प्रकार नारद मुनि से सुना, तो उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकली राज कार्य पूरी तरह से छोड़ दिया, मंत्रियों के हवाले किया और ध्रुव के ऊपर मेडिटेट कर रहे थे। ध्रुव की ग्लोरीज के ऊपर, ध्रुव की भक्ति भावना के ऊपर मेडिटेट करना चालू किया। और इन द मीन टाइम ध्रुव महाराज मधुवन में पहुंचते हैं, यमुना में स्नान करके उस रात में व्रत करते हैं, फास्टिंग करते हैं। उसके बाद वो भगवान विष्णु की पूजा करना प्रारंभ करते हैं, जैसे नारद मुनि ने उनको बताया था। इसके बाद ध्रुव महाराज ने एक्चुअली इस प्रकार से तपस्या की जैसी तपस्या आज तक संसार में किसी ने भी नहीं की है। जिस प्रकार से ध्रुव महाराज की तपस्या है, वो तपस्या संसार में और कोई भी कभी भी नहीं कर पाया। प्रैक्टिकली 6 महीने के अंदर ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त किया। जिस प्रकार से हम कभी आईआईटी जहां हम लोग स्टूडेंट थे, उस समय आईआईटी का क्रैश कोर्स होता था, 45 डेज का क्रैश कोर्स होता था, तो 45 दिन में 1 साल की स्टडी हो जाती थी। इसी तरह से ध्रुव महाराज ने 6 महीने का क्रैश कोर्स किया भगवान को प्राप्त करने का। जो क्रैश कोर्स हम जिंदगी भर में करते हैं, वो ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर खत्म कर दिया। भगवान को 6 महीने के अंदर भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो बहुत ज्यादा लेवल की तपस्या की, उतनी तपस्या पॉसिबल नहीं है कलयुग में करना। पहले महीने ध्रुव महाराज हर तीसरे दिन केवल फल और फूल खाते थे। हर तीसरे दिन खाया, फिर 6वें दिन खाया, फिर 9वें दिन खाया, फल फूल इस प्रकार से खाते थे। दूसरे महीने उन्होंने तपस्या को बढ़ा दिया। अभी फल और फूल खाते थे, अभी केवल पत्तियां और सूखी घास खाते थे, और वो भी 6 दिन में 1 बार। तो मतलब 1 महीने में कितनी बार? 5 बार। पहले 1 महीने में 10 बार, अभी 1 महीने में 5 बार केवल सूखी घास और पत्तियां खाते थे। उसके बाद तीसरे महीने केवल पानी पीते थे 9 दिन में 1 बार, मतलब महीने में 3 बार पानी पीते थे। इतनी तपस्या सुन के ही हम हालत खराब हो जाती है। हम एकादशी में अगर 12 बजे तक फास्ट रखना पड़ता है, तब भी मुश्किल होता है। एकादशी निर्जला फास्ट साल में 1 बार ही आता है, और वो 1 दिन में सब भक्त सोचते हैं कि आज मेरा जीवन खत्म नहीं हो जाएगा एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन। तो तीसरे महीने में उन्होंने केवल पानी पिया 9 दिन में 1 बार, और इस प्रकार से पूरे समय भगवान के ध्यान में लगे रहे। चौथा महीना आया, चौथे महीने के अंदर में उन्होंने प्राणायाम की सिद्धि प्राप्त कर ली, और चौथे महीने में वो केवल 12 दिन में 1 बार सांस ले रहे थे। सब कुछ खाना आना बंद कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया, 12 दिन में केवल 1 बार सांस ले रहे थे। प्राणायाम की सिद्धि, जब कोई योगी प्राणायाम में बहुत एडवांस अवस्था में पहुंचते हैं, तब वो अपनी ब्रीदिंग को रोक सकते हैं। अभी भी हिमालय में कुछ योगी होंगे इस प्रकार से, जो ये सारे कार्य कर सकते हैं। प्राणायाम की सिद्ध अवस्था में जाने के बाद सांस को बहुत धीमा कर सकते हैं। ऐसा करके ऋषि लोग कई सौ सौ सालों तक जीवित रहते हैं। तो चौथे महीने में उन्होंने केवल हवा ग्रहण करके 12 दिन में 1 बार हवा ग्रहण करते थे। पांचवें महीने में उनकी ब्रीदिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट हो गई कि एक पैर पे ही खड़े रहते थे बिना हिले डुले, और सब कुछ बंद कर दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया। 12 दिन से और ज्यादा लंबे समय तक सांस नहीं ले रहे थे। तो जब इस प्रकार से किया, तो ध्रुव महाराज ने भगवान को हृदय में कैप्चर कर लिया अपनी तपस्या के कारण और भक्ति के कारण। और चूंकि भगवान पूरे संसार के आश्रय हैं, और भगवान जब ध्रुव के हृदय में आ गए और ध्रुव ने सांस लेना बंद कर दिया, तो पूरे संसार में सांस हवा खत्म हो गया, हवा खत्म होने लगा, संसार की लाइफ चोक होने लगी, देवताओं को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। क्योंकि ध्रुव और भगवान के बीच में ऐसा कनेक्शन था कि ध्रुव के अंदर भगवत चेतना पूरी तरह से डेवलप हो गई थी, ऐसा लगा था कि भगवान की शक्ति उनके अंदर आ गई। तो ध्रुव का जो एक पैर जो धरती पर था उसके कारण से धरती भी कांपने लगी, और ध्रुव के सांस लेने के बंद करने के कारण पूरे तीनों लोकों में हवा बंद हो गई। जिस प्रकार से बड़ा हाथी अगर धरती पर पैर रखता है कुछ स्थान पे तो धरती पर प्रेशर आता है, तो ध्रुव महाराज के पैर के प्रेशर के कारण धरती हिलने लगी। ध्रुव महाराज का इतना प्रेशर हो गया कि उनका जो वेट था वो यूनिवर्स के वेट के समान हो गया। और ध्रुव ने जब अपने पूरी बॉडी के सारे होल्स को खत्म बंद किया तो पूरा यूनिवर्स स्टॉप हो गया, चोक हो गया। और जब देवताओं ने इस प्रकार से देखा कि सांस लेना बंद होने वाला है तो देवता बहुत चकित हो गए और घबरा भी गए। तुरंत भगवान के पास जाते हैं और उनसे रक्षा की प्रार्थना करते हैं। देवता लोग सीधे भगवान के पास नहीं जाते, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान के पास ब्रह्मा लेके गए, और भगवान के पास जब पहुंचे भगवान को ऑलरेडी पता था कि किस कारण से ये हो रहा है। देवताओं को ऐसा लगा कि कोई राक्षस ने ऐसा तो नहीं किया, पर भगवान को ऑलरेडी पता था। भगवान ने बोला था कि चिंता मत करिए, मेरा एक भक्त है ध्रुव, वो इस प्रकार से तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या के कारण ये हो रहा है, तो मैं जाके उसकी तपस्या को एंड करता हूँ। शुद्ध भक्ति में वो जो तपस्या कर रहा है उसके कारण उसने मुझे आकर्षित कर लिया है, और इसलिए मेरी शक्तियां भी उसको प्राप्त हो गई हैं। तो इतना इतना बोलने के बाद भगवान फिर देवताओं को आशीर्वाद देने के बाद ध्रुव के पास जाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठते हैं और मधुवन की तरफ प्रस्थान करते हैं। उस समय ध्रुव जो थे वो लगातार भगवान को अपने हृदय में देख पा रहे थे, लगातार दर्शन कर रहे थे भगवान का हृदय अपने हृदय में। और भगवान जब सामने आए तो भगवान ने क्या किया, उनके हृदय से अपना रूप गायब कर दिया। तो जैसे कोई अगर भगवान का लगातार दर्शन कर रहा है और एकाएक वो दर्शन गायब हो जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है कि सपोज हम देख के आए कि किचन में हम जब गए तो हमने देखा कि गुलाब जामुन का डिब्बा रखा है, करीब 10 गुलाब जामुन है उसके अंदर। तो हम एकदम खुश हो गए कि अभी मैं थाली लेके आता हूँ, मैं ही हूँ, सबसे पहले हमें गुलाब जामुन दिखा। तो हम जाके थाली लेके आता हूँ, अभी आके गुलाब जामुन लूंगा। और आप थाली 2 मिनट में लेके आए, देखा कि सारे गुलाब जामुन गायब है, तो व्यक्ति एकदम परेशान हो जाता है। ये जस्ट एक मटेरियल एग्जाम्पल है। भगवान का दर्शन तो गुलाब जामुन से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है, ज्यादा आकर्षक है। तो ध्रुव अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे और उसी समय भगवान ने अपने दर्शन हृदय से खत्म कर दिए। तो ध्रुव एकदम से चिंतित हो गए, और चिंता होने के कारण उन्होंने जब आंख खोली तो उनकी आंख के सामने भगवान स्वयं खड़े थे। मतलब जिस जिस पर्सनालिटी को वो हृदय में दर्शन कर रहे थे वही पर्सनालिटी उनके सामने उपस्थित हो गई। और जब ध्रुव ने इस प्रकार से भगवान को अपने सामने देखा तो बहुत एक्साइटेड हो गए, और तुरंत उन दिव्य उन्माद की अवस्था उनको प्राप्त हुई। तुरंत तो उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। और क्योंकि ध्रुव एक्चुअली भले तपस्या करने आए थे पर 5 साल के ही बालक हैं, तो नेचुरली उनको इतना एटिकेट पता नहीं था कि भगवान को सम्मान करना कैसे करेंगे, भगवान से क्या प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि 5 साल के बालक को क्या पता होगा। और भगवान को भी समझ में आया कि ध्रुव छोटा बालक है, तो भगवान ने उसके सिर के ऊपर अपने शंख को स्पर्श किया। भगवान का जो शंख है उस शंख को उन्होंने ध्रुव के सिर के ऊपर स्पर्श किया, और भगवान के रूप में डूबने के से इस प्रकार से लग रहा था जैसे ध्रुव की सारी इंद्रियां भगवान का दर्शन कर रही हैं। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव की आंखों के अंदर सारी इंद्रियों की शक्ति आ गई है, और ध्रुव लगातार भगवान को देखना चाहते हैं और भगवान के चरणों को वो स्पर्श करना चाहते हैं, भगवान को अपनी भुजाओं में एम्ब्रेस करना चाहते हैं। तो यद्यपि ये छोटे बालक थे परंतु उनको अच्छे से प्रार्थनाएं करना नहीं आता था, और इस तरह से ध्रुव को दुख भी हो रहा था जब वो भगवान से प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको संस्कृत नॉलेज और ये सब चीजें नहीं पता थी। तो भगवान ने जब उनको शंख से स्पर्श किया तो ध्रुव महाराज को सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। ध्रुव की प्रार्थनाएं बहुत बहुत अच्छी प्रार्थनाएं हैं, भागवत की बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थनाएं हैं। ध्रुव महाराज बताते हैं, हे भगवान, मेरे हृदय के अंदर उपस्थित होके आपने मेरी सोती हुई इंद्रियों को जगा दिया, और मेरे बोलने की शक्ति भी आपने मुझे प्रदान की। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रारंभ में आपने इसी तरह से ब्रह्मा को भी ज्ञान प्रदान किया था, और ब्रह्मा आपको देख पाए और आप फिर उसके बाद पूरे संसार को भी समझ पाए। जिस प्रकार से ब्रह्मा को आपने ज्ञान प्रदान किया था, उसी तरह से आपने आप मुझे भी ज्ञान प्रदान करिए। जैसे कोई व्यक्ति नींद से उठता है और फिर वो अपने कर्तव्यों को पहचानता है, तो मैं भी अपने कर्तव्यों को पहचानना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से आप अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, उसी तरह से मेरे ऊपर भी कृपा करिए। और फिर ध्रुव ने बताया, ध्रुव को एक्चुअली भगवान को देखने के बाद उनकी ऑलरेडी वो जो इच्छा थी ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की, वो इच्छा खत्म हो गई। उल्टे उनको दुख होने लगा कि मैं भगवान के पास इतनी छोटी इच्छा लेके आया, इतने छोटे काम के लिए मैं भगवान के पास आया। और ध्रुव बोलते हैं कि जो मेरे जैसे मूर्ख लोग होते हैं वो एक्चुअली आपको आपकी वर्शिप करते हैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, जबकि ये शरीर जो है एक बैग के समान है। इसके अंदर इंद्रियां हैं, ब्लड है, यूरिन है, सब कुछ इस बैग के अंदर पैक करके रखा है और उस बैग से हम आकर्षित होते हैं। केवल किस कारण से? भगवान की माया शक्ति के कारण से। तो ध्रुव ने बताया कि आपको प्राप्त करने के बाद आप तो कल्प वृक्ष के समान है, आप इस जन्म मृत्यु से भी छुटकारा लोगों को प्रदान कर सकते हैं, परंतु मैं आपको प्राप्त करने के लिए इतना छोटा इच्छा लेके आया, भौतिक इच्छा लेके आया, भौतिक भोग की इच्छा लेके आया, इस कारण से मैं बहुत पतित हूँ, मूर्ख हूँ। अभी मुझे पता चला कि आपके चरणों में ध्यान लगाने से जो दिव्य आनंद प्राप्त होता है और जो शुद्ध भक्तों के द्वारा आपके बारे में सुनने से आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद कोई इस संसार में सोच ही नहीं सकता है। संसार में सबसे नीचे आनंद पाया जाता है, जड़ आनंद। एक्चुअली आनंद नहीं है, वो निरानंद जैसा है, परंतु संस्कृत टर्मिनोलॉजी में उसको जड़ आनंद बोलते हैं। जो व्यक्ति भौतिक सुख से आनंद प्राप्त करता है, जड़ आनंद के ऊपर होता है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद का मतलब जो ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म लीन होता है और ब्रह्म ब्रह्म ज्योति का आनंद होता है, वो भी नेगेटिव मतलब जीरो है वो। और उसके बाद ब्रह्मानंद से ऊपर होता है प्रेम आनंद, भगवत प्रेम का आनंद, और उससे भी ऊपर होता है भगवत सेवा का आनंद। तो जड़ आनंद और ब्रह्मानंद, प्रेमानंद और सेवानंद। तो ध्रुव महाराज बता रहे थे कि उसके आगे आपके आपके चरणों में सेवा और उससे जो प्रेम, उससे जो आनंद मिलता है, उसके आगे और कोई आनंद का कोई तुलना नहीं है। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे आपके शुद्ध भक्तों का संग मिल सके, जो कि लगातार आपकी भक्ति में लगे रहते हैं। इस तरह से मैं अगर शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करूंगा तो ये श्योर है कि मैं इस संसार को, इस संसार, इस भव सागर को पार कर सकूंगा। और आप अभी मेरे सामने प्रकट हुए हैं, इसलिए संसार के लोगों को जो भी आपके बारे में डाउट है, वो सारे डाउट आपने खत्म कर दिए हैं मेरे सामने प्रकट होके। अभी मैं समझ सकता हूँ कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और इस प्रकार से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सभी अवतारों को देने में सक्षम हैं। जो भी भक्त आपकी सेवा करते हैं बिना किसी इच्छा के, उनको ऐसा पता चलता है कि आपकी ये जो सेवा है इस पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करने या ब्रह्मा के जैसा राज्य प्राप्त करने से कहीं ऊपर है। पर चूंकि आप कृपालु हैं, इसलिए आप मेरे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं उनको भी आश्रय प्रदान करते हैं। जैसे जब गाय का छोटा बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे में कोई शक्ति नहीं होती है, पर गाय इतनी कृपालु होती है कि उसको उसको सारी वस्तुएं प्रदान करती है, उस बच्चे को मिल्क देती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। इस प्रकार से आप, मैं भी एक पतित जीव हूं, परंतु आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने बोल के प्रार्थनाएं फिनिश की। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, भगवान के बड़े बड़े भक्त जो हैं वो सभी की ये कॉमन प्रार्थना होती है कि भगवान आप मुझे शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करिए। ये एक कॉमन प्रार्थना होती है, चाहे ध्रुव हों, प्रहलाद हों। तो इससे समझना होगा कि वैदिक शास्त्र कितना इम्पोर्टेंस देते हैं भक्त संघ को, कि ध्रुव महाराज ऑलरेडी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, परंतु भगवान के दर्शन करके भगवान से क्या मांग रहे हैं, मुझे भक्तों का संग प्रदान करिए। तो जो व्यक्ति भगवान को सामने देख रहा है तब भी वो भक्तों का संग चाहता है, क्योंकि संसार की परिस्थितियां ऐसी हैं कि कभी भी हमारे ऊपर माया का अटैक हो सकता है, हम भ्रमित हो सकते हैं, परंतु अगर हम भक्त के साथ रहते हैं तो भक्त हमें भ्रमित होने से बचा लेते हैं। इसलिए ये एक कॉमन प्रार्थना है जो कि भगवान के सभी भक्त करते हैं, और प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में हमें वो भक्त संघ मिला है कि उस भक्त के संघ में हम निवास करते हैं। रेगुलर भक्तों का संग लेते हैं, जिससे हमें भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो ऑफलाइन संघ हो चाहे ऑनलाइन संघ हो, परंतु भक्तों का संघ हमें प्राप्त हो जाता है। कोरोना के कारण हो सकता है ऑफलाइन मिलना इतना कम हो गया, परंतु ऑनलाइन हम अभी एक देश से दूसरे देश में भी मिल सकते हैं, ये एक फैसिलिटी हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने प्रदान किया। तो इस प्रकार से बोल के ध्रुव ने अपनी प्रार्थनाएं खत्म की और भगवान ने फिर बताया कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय में जो इच्छा थी वो जानता हूं, पर आपकी जो इच्छा है बहुत कठिन है, परंतु मैं उसको प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को प्रदान करूंगा। मैं आपको एक ध्रुव तारा जो है वो मेरा निवास स्थान है, इस संसार में वैकुंठ लोक है, और उस लोक का राज्य मैं आपको प्रदान करता हूँ। और ये ध्रुव लोक जो है ये कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये नित्य लोक है, तो ब्रह्मा का समय, ब्रह्मा का दिन खत्म होने पर भी ये ध्रुव लोक खत्म नहीं होता है, और ये ध्रुव लोक सभी लोकों का सेंट्रल पॉइंट है, सारे के सारे प्लैनेट्स इस ध्रुव लोक के चारों तरफ सर्कमएम्बुलेट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई बैल जो है उसको अगर कोई खंबे से बांध दिया जाए तो उस खंबे के चारों तरफ वो बैल घूमता है, उसी प्रकार से जो ध्रुव लोक है उसके चारों तरफ सभी लोग घूमते हैं। और भगवान बताते हैं कि आप इस प्रकार से जब आपके पिता रिटायर हो जाएंगे तो आपको वो राज्य प्रदान करेंगे, उसके बाद 36,000 साल तक आप राज्य करेंगे, और इतना समय होने के बाद भी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी भी आप वृद्ध नहीं होंगे, आपकी इंद्रियां भी कभी भी कमजोर नहीं होंगी। और कुछ समय बाद आपके भाई उत्तम को मारा जाएगा, तब आप उत्तम जो है वो शिकार करते समय उसको यक्ष लोग मार देंगे, और अपने भाई की मृत्यु के कारण दुखी होके आप यक्षों से भी फाइट करेंगे, और आपकी माँ जो है सुरुचि जो सौतेली माँ है वो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, अपने पुत्र की मृत्यु के दुख में उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, और राजा के रूप में आप बहुत सारे यज्ञ करेंगे और बहुत सारा धन आप दान देंगे। इस प्रकार से आप भौतिक सुख को भी प्राप्त करेंगे और मृत्यु के समय मुझे भी याद करके मेरे धाम में वापस आएंगे। मेरे धाम मतलब पोल स्टार, ध्रुव लोक, जहाँ पे भगवान श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। तो ये ध्रुव लोक जो है ये लोकल लोकल वैकुंठ प्लेनेट है, भौतिक संसार के अंदर वैकुंठ प्लेनेट है ये, जो कभी भी विनाश नहीं होता है। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भौतिक भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, परंतु इस अवस्था में भगवान ने ऐश्वर्य प्रदान किया, क्योंकि ध्रुव की उस प्रकार से इच्छा थी, और भगवान ने साथ साथ ये भी बोला, ध्रुव का केस डिफरेंट था, भगवान जानते थे कि वो इतने बड़े भक्त हैं कि वो कभी भी कृष्ण भक्ति से दूर नहीं जाएंगे, तो इसलिए भगवान ने ध्रुव को ये भौतिक भौतिक सुख भी प्रदान किया। तो इससे पता चलता है कि जो बहुत हाईली क्वालिफाइड डिवोटी है वो भौतिक सुख उनको मिलता भी है तब भी उनका पतन नहीं होता है, क्योंकि वो उस सुख का भोग करते समय भी भगवत भक्ति के प्लेटफॉर्म से नीचे नहीं आते हैं। तो ये ध्रुव का बहुत स्पेशल केस है, सभी केस इस प्रकार से नहीं होते हैं, ये एक स्पेशल केस था। इस प्रकार से ध्रुव के द्वारा पूजित होने के बाद भगवान विष्णु अपने लोक में जाते हैं गरुड़ के पीछे सवार होके, और ध्रुव भगवान से इतने ज्यादा आकर्षित रहते हैं कि वो जब तक भगवान उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते तब तक ध्रुव भगवान को देखते रहते हैं, और जब भगवान उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तब फिर ध्रुव अपने घर वापस जाते हैं। और अभी ध्रुव शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गए हैं, तो घर जाते समय वो ये सोच रहे हैं कि देखो मैं कितना अभागा हूँ, सामान्यतः भगवान के दर्शन करने के बाद व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है, परंतु मेरे अंदर मैंने इतना पाप किया हुआ है कि भगवान ने मुझे दर्शन दिया और मुझे साथ में नहीं ले गए, भगवान ने मुझे इतना क्वालिफाइड नहीं समझा कि मैं उनके धाम में जाने लायक हूँ, इसलिए भगवान ने फिर से मुझे मटेरियल एंजॉयमेंट दे दिया। तो अभी ध्रुव की इच्छा पूरी हो गई, परंतु अभी ध्रुव को ऐसा लग रहा है कि मुझे 36,000 साल का जो शासन दिया वो भगवान ने क्यों दिया, मैं मतलब क्वालिफाइड नहीं हूँ वैकुंठ जाने के लिए, इसलिए भगवान ने मुझे यहीं रोक के रख दिया, क्योंकि अगर भगवान मुझसे प्रसन्न होते वास्तविकता में तो मुझे साथ में ले जाते। इस प्रकार से दुख करते करते ध्रुव अपने घर वापस आते हैं। ये हालांकि आचार्य बताते हैं कि ये दुख जो है ध्रुव की विनम्रता के कारण है, जो कि शुद्ध भक्तों का लक्षण होता है, शुद्ध भक्त अपनी शुद्धता को नहीं मतलब रियलाइज नहीं करते हैं और इस प्रकार से सोचते हैं। तो ध्रुव को यह दुख हो रहा था कि वो इतना छोटा सा काम, उनकी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए वो भगवान के पास तक गए, और कितना गलत कार्य है, और उनकी ये इच्छा थी कि ब्रह्मा से ज्यादा बड़ा लोक मिलना चाहिए, भगवान ने ये सारी इच्छाएं पूरी कर दी, परंतु ध्रुव दुखी थे, क्योंकि उनको लगा कि ऐसी इच्छाएं कोई अच्छे भक्त में नहीं होती हैं, दैट मीन्स मैं बहुत बहुत खराब तरीके का व्यक्ति हूँ, क्योंकि जो एडवांस भक्त होते हैं वो इस प्रकार की इच्छाओं को लेकर भगवान के पास नहीं जाते। और घर जाते जाते ध्रुव अपने आप को कंडेम कर रहे थे कि देखो मैंने क्या किया, मैं भगवान के चरणों तक गया। वो भगवान अपनी प्रेम भक्ति भी प्रदान कर देते हैं लोगों को, परंतु मूर्खता के कारण मैंने ऐसी चीजें मांग ली भगवान से जो कि इस संसार में नष्ट होने वाली है। तो यद्यपि मैं भगवान के फेस टू फेस आया, केवल 6 महीने के अंदर मैं भगवान का दर्शन कर पाया, जबकि दूसरे लोग इसी गोल को प्राप्त करने में कई कई जन्म लगा देते हैं, परंतु मेरा जो इंटरेस्ट था भगवान के इंटरेस्ट से मैच नहीं करता था, इसलिए मेरा पतन हो गया। और ध्रुव ने सोचा कि शायद इसका क्या कारण है, जो देवता लोग हैं जिनको धरती पर वापस आना पड़ता है, शायद उनमें से कोई ऐसा ईर्ष्यालु होगा कि उन्होंने मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरी बुद्धि को स्पॉइल कर दिया। इस कारण से जब भगवान सामने आए तो मैं, और भगवान को मैंने इस प्रकार से अप्रोच किया और भगवान ने मुझे ये वरदान दिया, तो कुछ देवताओं ने इस प्रकार से हो सकता है मेरी बुद्धि को डिस्ट्रॉय किया। और जब नारद मुनि मुझे समझा रहे थे, नारद मुनि ने मुझे समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं की आवश्यकता नहीं, भौतिक इच्छाओं से डिटैच होना चाहिए, परंतु मैं समझ नहीं पाया उनकी बात। और भ्रम के कारण मेरे हृदय में ऐसा गलत स्वभाव था कि मैं सोचता था कि मेरी माँ और मेरा भाई मेरे शत्रु हैं। इसलिए शुद्ध भक्त के संपर्क में आने के बाद, भगवान को, भगवान की सेवा करने के बाद, भगवान को संतुष्ट करने के बाद भी मैंने भौतिक संसार में नेम फेम को मांगा। तो मैं एक ऐसा गरीब व्यक्ति हूँ जिसने कि बहुत बड़े राजा को संतुष्ट किया, और राजा ने जब पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो वो गरीब व्यक्ति ने कुछ एक दो मुट्ठी चावल मांग लिए। मैं इस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति हूँ। तो ध्रुव को लगा कि अभी 36,000 साल कैसे कटेंगे, भगवान तो चले गए और मुझे 36,000 साल यहीं रहना पड़ेगा। ये सोच के उनको बहुत दुख हो रहा था। ऐसा ऐसा सोच के ध्रुव अपने घर की तरफ आ रहे हैं, और उत्तानपाद को मैसेज मिलता है कि आपका पुत्र आने वाला है। उनको इन्फॉर्म होता है कि ध्रुव वापस लौट रहे हैं। उत्तानपाद ये सुन के एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, साथ साथ उनको बहुत दुख भी होता है। उनको लगता है कि उन्होंने अपने पुत्र के लिए बहुत अपराध किया है, अपने आप को अपराधी समझते हैं। तो साथ में और साथ साथ उत्तानपाद को ये भी पता चला कि ध्रुव का जो भगवान के विष्णु के दर्शन किए उसके कारण से पूरे ब्रह्मांड में ध्रुव का नाम फेमस हो गया था। तो इतने प्रसन्न हुए कि उनको मैसेंजर की बात पे विश्वास नहीं हुआ, वो खुद भाग के जाना चाहते थे। तो अपने ब्राह्मणों को, मिनिस्टर्स को लेके राज्य की सीमा तक पहुंच गए अपने पुत्र को रिसीव करने के लिए। और जब ध्रुव सामने आए तो उन्होंने देखा कि भगवान के शरीर से स्पर्श होने के कारण ध्रुव का शरीर भी आध्यात्मिक तरीके से हो गया है, अलग टाइप की चमक उनके शरीर से निकल रही है। ऐसा देख के उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और जिस प्रकार से पिता जब पुत्र को मिलते हैं, उनको अपनी गोदी में उठाते हैं, उनके सिर को टच करते हैं, उत्तानपाद ने ध्रुव को अपने गले से लगाया और इतने ज्यादा आंसू निकले कि प्रैक्टिकली लिखा है कि ध्रुव पूरी तरह से भीग गए उत्तानपाद के आंसुओं में। और ध्रुव ने अपने पिता को प्रणाम किया और अपने पिता से पूछा कि उनके वेलफेयर के बारे में। फिर दोनों माँ भी साथ में आई थी, उन दोनों को भी ध्रुव ने प्रणाम किया, सुनीति और सुरुचि। और जब सुरुचि ने देखा कि ध्रुव उनके सामने प्रणाम कर रहे हैं, तो सुरुचि ने तुरंत उनको पिकअप किया और उससे माफी भी मांगी, उनको आशीर्वाद दिया कि आप लंबे समय तक जिएंगे। इस प्रकार से उत्तम और ध्रुव एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं। और सुनीति ने जब अपने पुत्र को मिली, क्योंकि सुनीति ने इतने समय तक पुत्र को नहीं देखा था, तो सुनीति को ध्रुव को देखने के बाद उनके सारे दुख दूर हो गए। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे समुद्र के समान। और इतने शुभ सीन को देख के जो भी राजमहल के जितने भी लोग थे, उन्होंने सुनीति की बहुत प्रशंसा की कि उनका पुत्र इतना महान है। और इस प्रकार से राजा उत्तानपाद ध्रुव और उत्तम को अपने साथ लेके आए, और रिटर्न के समय पूरी की पूरी सिटी को सजाया गया था, गॉर्जियसली पूरी सिटी को सजाया गया था। और जैसे जैसे ध्रुव महाराज रोड पे जा रहे थे, तो घर की स्त्रियां बाहर निकल के ध्रुव को दर्शन कर रही थी, और ध्रुव के ऊपर अलग अलग आशीर्वाद, अलग अलग प्रकार से उनका स्वागत कर रही थी, फूल माला, फूल और ये सब फेंक रही थी। और ध्रुव फिर वापस अपने पिता के पैलेस में आए। राजा उत्तानपाद बहुत संतुष्ट थे ध्रुव के साथ। और जब ध्रुव महाराज इस एज के हो गए कि वो सफिशियंट थे राज्य को संभालने के लिए, तो राजा ने वानप्रस्थ आश्रम धारण किया और ध्रुव महाराज को राज्य प्रदान किया। तो इसके आगे जो नेक्स्ट है ध्रुव महाराज के लाइफ में जो आगे आता है, वो हम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे को स्टार्ट करेंगे वहां से नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है जब उनके भाई की मृत्यु होती है और ध्रुव महाराज यक्षों से युद्ध करने के लिए जाते हैं, वो सेक्शन इसके बाद आता है, जो कि श्रीमद भागवतम में चौथे स्कंध में 11 11 और 12 10 या 11 अध्याय में आता है। तो वो हम नेक्स्ट फ्राइडे को डिस्कस करेंगे, 22 तारीख को। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं इस सेक्शन से संबंधित, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर अपना हाथ रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। यस राजवीर प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा
यस
एक
प्रभु।
सवाल है कि ध्रुव महाराज काफी बड़े भक्त है, लेकिन शुद्ध भक्तों की श्रेणी में वो कैसे आते हैं? मतलब उन्हें तो क्रोध आ गया था एक टाइम पे भक्ति के बावजूद।
अच्छा, जो बाद में यक्ष के समय जो क्रोध आया था,
यस
ओके, प्रभुपाद जी लिखते हैं भागवत में चौथे स्कंद में कि वो क्रोध एक्चुअली ध्रुव महाराज के लिए नेचुरल नहीं था, अननेचुरल क्रोध था। तो उसमें ऐसा आता है कि कई बार माया शक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए कोई भक्त विचलित हो सकता है, परंतु वो तुरंत वापस आ जाते हैं। ध्रुव महाराज के केस में भी ऐसा हुआ कि कुछ समय तक ऐसा हुआ, फिर जब मनु महाराज आते हैं उनको समझाते हैं तो फिर से वो वापस आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कुछ कुछ लेसन टीच करने के लिए भगवान अपनी माया शक्ति का प्रभाव इस प्रकार से करते हैं, परंतु वो जनरल केस में नहीं होता है। तो ध्रुव महाराज का जो एंगल था पहले तो वो जस्टिफाइड था, परंतु उनका जो ओवर एंगल था वो जस्टिफाइड नहीं था, कि उनके भाई को एक ही यक्ष ने मारा था, परंतु वो सभी यक्षों को मारना चाहते थे। इसलिए भगवान ने तुरंत अपने भक्त मनु को भेजा, स्वयंभू मनु ने आके ध्रुव को समझाया और ध्रुव को समझ में आया कि उनकी मिस्टेक थी। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हो सकता है कुछ मोमेंट के लिए कोई भक्त विचलित हो जाए, परंतु उससे ऐसा नहीं होता है कि उसका पतन हो गया। ठीक है।
एक और सवाल है मैं पूछ सकता हूँ।
यस
जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे माया होती है?
आध्यात्मिक जगत में योग माया होती है, महामाया नहीं होती है। माया दो शक्तियां हैं, एक शक्ति बहिरंगा शक्ति है जो कि भौतिक संसार को हैंडल करती है, एक अंतरंगा शक्ति है जो कि आध्यात्मिक संसार को हैंडल करती है। गोलोक वृंदावन में उसी वो ही आध्यात्मिक शक्ति पूर्णमासी के रूप में होती है। पूर्णमासी गोलोक वृंदावन में निवास करती है एक स्त्री के रूप में, एक वृद्ध स्त्री के रूप में, और वो भगवान की लीलाओं को संचालित करती है।
मतलब मेरा सवाल ऐसा था कि वहां पे हमारा ध्यान नहीं भटक सकता, जिससे हमारा ध्यान,
हाँ,
हम यहाँ पे माया में गिरे हुए हैं,
जो
तो
योग माया
आध्यात्मिक
है वहां ध्यान
जगत
नहीं
में।
भटकती है, महामाया एक्चुअली भुलाने का कार्य करती है, योग माया भगवान की सेवा में लगाने का कार्य करती है। उसका ड्यूटी यही है कि भक्तों को भगवान की सेवा में लगाना। योग माया की फाइनल इंचार्ज जो है वो श्रीमती राधा रानी है, तो वो भक्तों को भगवान की सेवा में लगाती है। ओके,
थैंक यू सर।
नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न। एक और हाथ उठाया है भगवत।
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। यस प्रभु।
हाँ प्रभु, क्वेश्चन ये है कि जब ध्रुव महाराज ध्रुव तारा होता है
हाँ
तो वहां पे जाते हैं, तो मतलब वहां का डिस्क्रिप्शन कैसा होगा कि वहां पे भी शुद्ध भक्त उनको मिलते हैं?
जो ध्रुव लोक है, ध्रुव
हाँ
लोक
हाँ
में शुद्ध भक्त निवास करते हैं क्योंकि वो वैकुंठ लोक है और ध्रुव महाराज वहां के राजा हैं, वहां पे भगवान भी उपस्थित हैं और वो ध्रुव महाराज और सभी लोग मिलके भगवान की सेवा करते हैं। तो वैकुंठ लोक के समान है वो, जैसे नारायण का लोक है वैकुंठ, उसी प्रकार से ध्रुव लोक है।
ओके
ओके, कौन जैमिन प्रभु है? अच्छा,
यस प्रभु,
आपका ये नाम दूसरे नाम से है आपका ये ना?
एक्चुअली मेरा फ्रेंड का जीमेल आईडी है इसलिए इसमें से। हाँ
ओके ओके ओके। और कोई प्रश्न किसी को पूछना है?
यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम प्रभु जी। यही श्रीमद् भागवतम में श्री प्रभुपाद जी व्याख्या में लिखते हैं कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छी प्रकार से जप करता है तो उसका लाभ उसे 7 दिन के अंदर मिल जाएगा, मतलब वो रियलाइज कर सकता है। तो प्रभु जी कौन सी प्रोसेस के लिए वो बात करते हैं प्रभुपाद उसमें कि 7 दिन में?
सामान्यतः लोग भगवान को अप्रोच करते हैं, चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो ऐसा बताते हैं कि जिसकी जो इच्छा हो वो या तो उसको उस प्रकार से उसका फल मिलेगा या फिर भगवान उसकी इच्छाओं को शुद्ध कर देंगे अगर वो उतना इंटेंसिटी से करता है। सामान्यतः प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए तो उतना इंटेंसिटी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे हृदय के जो अपराध हैं वो हमें रोकते हैं उस प्रकार से करने से। हमें इच्छा होती है नाम जप करने की, परंतु हम कितना भी ट्राई करें परंतु नाम जप करते समय हम उस तरह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनसाइड अनर्थ जो है वो 7 दिन में दूर नहीं होते हैं। तो एक अवस्था है जब व्यक्ति का इंटरनल प्योरिफिकेशन कुछ लेवल तक हो जाए, उसके बाद तब फिर वो चीजें एक्ट करती हैं। जैसे हम सभी का इच्छा है नाम जप अच्छे से करने का, जब बैठते हैं तो नींद आना चालू हो जाती है चाहे कितना भी प्रयास करें। तो वो इंटरनल जो अंदर जो स्टॉक है पाप का और अनर्थ का जो स्टॉक है, जब तक वो एक लेवल तक कम नहीं होगा तब तक वो मुश्किल होगा। ओके
प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। बोलते हैं कि प्रभु जी जैसे दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो 24 आवर्स में अगर हम एक घंटा भी अपने लिए यूज करते हैं तो उसका हमें सफर करना पड़ेगा। प्रभु जी तो ऑलरेडी तो जैसे लिखा है मतलब श्रीमद भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि नियमित नींद लेनी चाहिए, तो 6 घंटे की नींद तो वो हमारे लिए होती है ना, हमारे शरीर के लिए, तो उसका फिर कैसे प्रभु जी उसको समझ सकते हैं? इस स्टेटमेंट को मेरे समझ नहीं है थोड़ा सा कि नींद के टाइम में तो अभी तो
उसका उसका क्या है कि जो व्यक्ति जागृत अवस्था में हमेशा भगवान की सेवा या भगवान का भगवान में एंगेज रहने का प्रयास करता है, तो जब वो सोता है, क्योंकि शरीर एक इंस्ट्रूमेंट जैसा है, तो जैसे आपने देखा होगा कंपनी में मोटर चलती है और फिर मोटर को स्टॉप किया जाता है जिससे फिर से अगली बार चले। अगर मोटर ज्यादा गर्म हो जाएगी और तो जल भी सकती है, इसलिए मोटर को जो रोकना है वो भी मोटर की साइकिल के अंदर ही आता है। तो ये शरीर जो है एक मशीन के समान है, तो इस मशीन की लिमिटेशन अगर पार होगी तो ये मशीन परेशान करेगी, इसलिए उस मशीन को रिफ्रेश करने के लिए जो सोना है वो उसी के अंडर में आता है। तो जो अगर जागृत अवस्था में भगवान की सेवा हमेशा करने का प्रयास करते हैं तो सोना जो है उनके लिए सेवा के अंदर आ जाता है, क्योंकि वो अपने शरीर को अगली अगली सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं, अगले दिन कैसे भगवान की अच्छे से सेवा की जाए उसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो वो उस सेंस में काउंट होता है। ठीक है, सुंदर केशव प्रभु।
हरे कृष्ण बिदन प्रणाम।
यस प्रभु,
थैंक यू सो मच जस्ट फॉर एलैबोरेटिंग वेरी वंडरफुल पास्ट टाइम ऑफ ध्रुव महाराज।
आई एम जस्ट नरेटिंग फ्रॉम भागवतम, नॉट डूइंग एनीथिंग, एनी मींस डायरेक्टली फ्रॉम भागवतम श्लोकस।
तो मेरे थोड़ा छोटे छोटे से दो डाउट है। एक तो ये आपने बताया कि जो योग माया शक्ति है जो पूर्णमासी है वो वृद्ध स्त्री के रूप में रहती है, तो ऐसा कोई मतलब पॉसिबिलिटी आध्यात्मिक जगत में भी रहता है क्या कोई वृद्ध होने का?
आध्यात्मिक जगत में क्या है कि उनकी एज फिक्स है, ऐसा नहीं कि वो वृद्ध जवानी से मतलब बचपन से बूढ़े और वृद्ध हुए हैं, वो उसी एज में उनकी लीला के लिए वो एज बनाया गया है, क्योंकि बुढ़े लोगों को लोग रिस्पेक्ट करते हैं और बच्चे भी दादा और दादी की गोद में खेलना पसंद करते हैं। तो कुछ ऐसे भक्त हैं जिनका एटर्नल रूप वही है जो कि उसी रूप में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान चाहते हैं कि वो इसी रूप में सेवा करें, तो उनको वो शरीर उस प्रकार से प्रदान किया जाता है और वो उस पे एज फैक्टर का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो लीला के आधार पर उनको प्रदान किया जाता है।
जैसे हम ऐसे वृंदावन में देखते हैं जब भगवान यहाँ पे आते हैं कुछ भी लीलाएं करते हैं तो ऑल दिस गोपी या गोपी इसकी जो मंजरी होती है वो हमेशा एक छोटा रूप लेते हैं 5 साल का, मतलब एक छोटी सी कन्या के रूप में रहती हैं। सो इवन यहाँ पे कोई यंग गर्ल्स भी नहीं रहते हैं गोपियों के अलावा, जस्ट मंजरी के रूप में रहते हैं, 5 साल की बच्ची रहती है, बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओरिजिनली थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मतलब वहाँ पे आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे इटर्नल उनका फॉर्म है पर यहाँ पे भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना आध्यात्म, जब भगवान यहाँ पे लीला करने के लिए आते तब यहाँ पे तो ऐसा कोई लीला है नहीं, कोई भी पास्ट टाइम ऐसा नहीं आता।
हाँ, भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन में ये भी डिफरेंस है कि भौम वृंदावन में भगवान की बाल लीलाएं होती हैं, जैसे पूतना का वध और जो भी छोटे में लीलाएं होती हैं, परंतु गोलोक वृंदावन में वो लीलाएं नहीं होती हैं, क्योंकि गोलोक वृंदावन में भगवान हमेशा नित्य नवे यौवन रूप में रहते हैं, पौगंड किशोर अवस्था में रहते हैं, तो भगवान की किशोर अवस्था हमेशा वहां पे मेंटेन होती है, एटर्नल मेंटेन होती है। वहां पे भगवान की बाल लीलाओं को स्मरण किया जाता है, सभी को याद रहता है, परंतु ये लीलाएं एक्चुअल में घटित नहीं होती गोलोक वृंदावन में। ये लीलाएं जब भी शास्त्रों में डिस्कस होती हैं वो किसी ना किसी ब्रह्मांड में जो भगवान ने लीला की है वहां पे डिस्कस होती है, तो ये डिफरेंस है गोलोक वृंदावन और भौम वृंदावन में। जब भगवान भौतिक संसार में लीलाएं करते हैं तो फिर जन्म से लेके किशोर अवस्था तक लीला करते हैं, पर गोलोक वृंदावन में उनका किशोर अवस्था की लीला एटर्नली चलती रहती है।
ठीक है भाई, लिटिल वन मोर डाउट।
हाँ
सर, ध्रुव महाराज की लाइफ में हमने देखा कि ध्रुव महाराज कैसे उन्होंने एक इंटेंस उनका डिजायर था भगवान को प्राप्त करने का। नारद मुनि उनको रास्ते में भी आया, उनको बोला कि नहीं आपको जो चाहिए मैं वो दे सकता हूँ, बट उन्होंने तुरंत उनको रिजेक्ट कर दिया उनकी बात को। देन अल्टीमेटली नारद मुनि समझ पाए कि नहीं ये क्या चाहते हो, तो उनको भगवान के विषय में बताया, भक्ति दिया। अल्टीमेटली भगवान को प्राप्त करने के बाद भी उनका जो इंटेंसिटी था वो कभी कम नहीं हुआ। अल्टीमेटली जब वो वहां से लौट रहे थे तब भी उनको जो लेमेंटेशन हुआ कि 36,000 साल तो यहाँ पे कौन रहेगा माय लॉर्ड, कौन यहाँ पे ये सब कुछ करेगा है? तो स्टिल ही वाज सो इंटेंसिव टू अचीव लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक भक्त होता है, भक्त के हमारे जो लाइफ है, हम कितना बार लाइफ पहले मटेरियल लाइफ था और मटेरियल लाइफ में किस तरीके स्ट्रगल कर रहे थे। एट दैट टाइम वी वर प्रेइंग कृष्णा प्लीज टेक मी एट लोटस फीट, है ना। आफ्टर गेटिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा एंड चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र और गेटिंग ऑल दिस फैसिलिटी डिवोशनल सर्विस, एंड वी डजंट वांट टू इन्वॉल्व एंड फुल्ली इमर्ज्ड इन द डिवोशनल सर्विस। वी वांट टू, हम प्लान कर रहे हैं हम कभी अमेरिका जाके कोई अच्छा डिग्री प्राप्त करके आए, इस कंट्री में जाके इस कंट्री में जो अच्छा जॉब लग जाए, अच्छा प्रमोशन हो जाए, ऑल दिस टाइप्स हम लोग हैंग करेंगे। वी गॉट दैट भक्ति, वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी गिवन बाय श्रील प्रभुपाद, सब कुछ हमें मिल गया, स्टिल हमें वो प्योर भक्ति का प्रोसेस मिल गया, भगवान की भक्ति, भगवान भी सब कुछ मिल गया, फिर हमारे अंदर इंटेंसिटी नहीं है कि कैसे बस ये ही मेरा एक समय है, 40, 30, 20 जो भी मेरे पास है बस दैट इज, इसके अलावा और कुछ नहीं। दैट इंटेंसिटी हाउ कैन वी डेवलप, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉट एन केवल पूछने के लिए पूछना, बोलने के लिए बोलना, इट्स नॉट लाइक दैट, हाउ कैन बी रियलाइज ऑल्सो दैट इंटेंसिटी।
बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि मेरे पास भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं मेरा भी वैसे ही हाल है। मुझे लगता है आश्रम में आके बहुत फैसिलिटी मिल गया तो अभी सब चल रहा है, भक्ति लोग भी सोचते हैं कि इनका भक्ति चल रहा होगा, परंतु मुझे लगता है भक्ति के अलावा भक्ति के नाम पे क्या क्या चल क्या चल रहा है मुझे ही नहीं पता। तो सामान्यतः एक चीज है जो मैं भी प्रयास करता हूँ इंटेंसिटी के लिए, दो फैक्टर है जिससे व्यक्ति सिंसियर हो सकता है। जैसे आदि शंकराचार्य बताते हैं एक अपनी पोयम में, स्मरण नित्यम अनित्यकम, व्यक्ति को नित्य रूप से संसार के अनित्य नेचर का स्मरण करना चाहिए। तो उसको ये पता हमेशा रहता है कि मेरे पास समय ज्यादा बचा नहीं है। तो ये एक फैक्टर बहुत कार्य करता है मेरे जीवन में भी। अगर मैं कोई चीज से परेशान रहता हूँ या भोग की इच्छा होती है या कुछ भी, कोई संबंध किसी से खराब होते हैं, भक्तों से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी इच्छा आती है, तो ये ध्यान आता है कि ज्यादा समय बचा नहीं है और डेस्टिनेशन बहुत दूर है। जैसे क्या था वो, एक कोई इसमें श्री कृष्ण सीरियल में कुछ आता था, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। तो वो हालत है कि बहुत दूर डेस्टिनेशन है और टाइम बहुत कम बाकी है। तो इसमें अगर हमने बाकी चीजों में टाइम गंवाना चालू कर दिया कि इस भक्त ने हमारे साथ ऐसा कर दिया और ये समस्या हो गया, तो फिर वो छूट जाएगा रास्ता। तो वो ये पोयम बहुत अच्छा है, स्मरण नित्यम अनित्यकम, हमेशा नित्य स्मरण रखना चाहिए कि संसार अनित्य है, हमारा स्टे भी अनित्य है। तो जितना भी समय निकल गया, ऑलरेडी 30-40-50% लाइफ तो चला गया है, तो ज्यादा बचा नहीं है। इसलिए अभी जितना बचा है उतना, जितना अच्छे से यूज कर लें उतना अच्छा रहेगा। वो चीज एक मुझे फायदा करता है। और दूसरा, नरोत्तम दास ठाकुर एक प्रार्थना में लिखते हैं कि जो जो ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने शुद्ध वैष्णवों की सेवा की है, उन वैष्णवों के हृदय को अगर हम प्रसन्न कर दें तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो एक होप है हमारे सबके जीवन में कि हो सकता है हम अपने लाइफ में परफेक्ट नहीं भी बन पाए या हमारा मन हमें परेशान करता रहे, बुद्धि परेशान करती रहे, परंतु एक चीज है कि अगर कोई ऐसा कार्य हम कर पाए अपनी सेवा के कारण, हमने शुद्ध भक्त के चेहरे पर मुस्कान लेके आ पाए जिंदगी में एक बार भी, कि उसको हृदय से लगा कि इसने बहुत अच्छी सेवा की, तो वो हमारा जिंदगी भर का एसेट बन जाएगा। उस एसेट के कारण भगवान हमें बचा लेंगे। तो ये दो चीज है कि कोशिश करें कि कैसे किसी शुद्ध भक्त के हृदय को खुश कर सकते हैं। और शुद्ध भक्त के हृदय को खुश करने का तरीका हम सभी को पता है, शुद्ध भक्त के हृदय को खुश करने का तरीका है कैसे जब भगवत नाम लोगों के पास पहुंचता है, लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता आती है, तो शुद्ध भक्त को प्रसन्नता मिलती है। तो कैसे हम कोई भी कार्य कर पाए, चाहे कोई भी सेवा हो, परंतु अगर हम भगवान का नाम और भगवत भक्ति लोगों को दे पाए, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हो, चाहे कॉलेज प्रीचिंग हो, कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग हो, लाइफ मेंबरशिप हो, परंतु अगर हम नाम लोगों तक दे पाए तो प्रभुपाद के चेहरे पे हंसी आएगी कि इतने लोगों को इसने नाम दिया है। तो ये दो चीजें बहुत हैं, एक बहुत होप देते हैं एंथुजियास्टिक रहने के लिए, एक तो अपना संसार का अनित्य नेचर और दूसरा शुद्ध भक्त के चेहरे पे खुशी लाने की इच्छा। ये दो चीजें अगर हम करते हैं तो बहुत कुछ एंथुजियाज्म बना रहता है। ओके,
थैंक यू सो मच।
ओके, एक और हाथ उठा है अभी। हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे। अजय अजय लाल प्रभु का हाथ उठा था। अजय प्रभु,
हरे कृष्ण गुरु जी।
यस प्रभु,
जैसे कोई जैसे एक माँ होती है, माँ का एक बेटा होता है, अगर कोई उसे मानना चाहता है तो उस स्टेप में क्या कर सकता है, वो उसका मार सकता है कि नहीं?
नहीं नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। माँ होती है, माँ का बेटा होता है और
हाँ उसका बच्चा हाँ, होता है। अब कोई हाँ, जैसे हो गया अपराधी हो गया, वो चाहता है उसको बच्चा को मारने के लिए, हाँ, उस समय वो क्या कर सकता है, उसे मार सकता है कि नहीं, मतलब किल कर सकता है कि?
अपराधी वो क्या क्यों किल कर सकता है? वो तो पाप पूर्ण है ना, किसी को भी मारना तो पाप है अपने आप में।
नहीं, जैसे हो गया एक माँ है, उसका एक बच्चा है, तो अपना बच्चा को तो सेव करना चाहता है, बचाना चाहता है।
हाँ,
एक जैसे चोर हो गया, वो चाहता है उसको हाँ, मारने चुराना है, वो मारना चाहता है वो बच्चा का, उस समय में वो माँ बच्चे को, उस समय में वो बच्चा मतलब माँ वो चोर को मार सकता है कि नहीं, किल कर सकता है कि नहीं?
ओ अच्छा, मतलब अगर चोर बच्चे को मारने आता है तो माँ चोर को मार सकती है कि नहीं?
हाँ जान से।
ओके, गुड क्वेश्चन। एक जगह पे मनु संहिता में भी आता है कि सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर मान लो अगर कोई हमारे शरीर पे अटैक कर रहा है या कुछ ऐसा गलत कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। और नॉर्मली मर्डर के लिए मर्डर दंड तो हमेशा वैलिड है, मनु संहिता भी वैलिड है। तो दूसरे की रक्षा करते समय अगर ये कोई पाप होता है तो उस पाप का इतना फल नहीं मिलता है, क्योंकि हमने किसी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए वो किया। तब भी प्रयास करना चाहिए कि उसको मारे नहीं, अगर हमारे पास शक्ति है तो उसको बंधक बना के न्याय संहिता में ले जाना चाहिए, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि उसको रोका जा सके, जान से मारने की आवश्यकता नहीं। परंतु अगर ऐसा केस होता है कि और कोई ऑप्शन ही नहीं, अगर वो हमें ही मारने वाला है, तो सेल्फ डिफेंस में वो किया जा सकता है। मनु महाराज इस प्रकार से आज्ञा दे मतलब सहमति करते हैं उसके लिए। ठीक है,
ठीक है, वही था।
ये तो इसमें भी आता ना प्रभु जी, जब अश्वत्थामा मारता है द्रौपदी के पुत्रों को,
हाँ,
वही केस बनता है ना।
हाँ, ओके, तो
थोड़ा सा मैं आपको हमारे भक्तों को थोड़ा सा मिला के मिलाना चाहते हैं आपसे, काफी दिन हो गए अभी मिले नहीं। तो हमारे जो भक्त हैं जो अभी आए हैं, थोड़ा सा हमारी रिक्वेस्ट को सुन करके अपना थोड़ा वीडियो को ऑन कर लीजिए, ताकि प्रभु जी और आपका एक डायरेक्ट बात हो पाए।
हाँ, एक्चुअली क्लास के बीच में वीडियो ऑन रहने से अच्छा होता है, मुझे भी पता चलता है कि कौन कौन है, मुझे नहीं तो अंदाजा नहीं लगता कि कौन कहाँ पे है, कैसा है, कुछ समझ में नहीं आता।
अजय अजय प्रभु अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। और अजय प्रभु, तो जैसे आप बोल रहे थे कि एक इंटरनेट फैसिलिटी का जो फायदा है कि वह अजय प्रभु नेपाल से भी क्लास ज्वाइन कर पाते हैं, कभी नेपाल में रहते हैं, पर अभी आना चाहते हैं वो आपके संग के लिए, बोला वैक्सीन आ जाए जल्दी से जल्दी, तो हम एक बार घूमना चाहते हैं आपके यहाँ।
बहुत अच्छा है। नेपाल में कहाँ रहते हैं?
नेपाल में प्रभु जी जनकपुर में रहते हैं, जानकी मंदिर।
जानकी मंदिर, ओ नेपाल में, नेपाल में सीता महारानी सीता का स्थान है ना। जब आएंगे तो वहां का प्रसाद लाइएगा जनक मंदिर का।
ठीक है,
ठीक है, ओके।
एंड अमन अमन रखवानी,
अमन, हाँ अमन तो है।
इज फ्रॉम इंदौर,
इंदौर
के दो भक्त है अभी, यार वो लेफ्ट कर चुके एक भक्त, अभी एक जी है। अमन तो आप बता सकते हैं प्रभु को आप क्या करते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ पा रहे हैं? जस्ट यू कैन टॉक 2 मिनट।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, यस प्रभु।
हाँ प्रभु जी, मैं होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और सुंदर केशव प्रभु जी के सानिध्य में
पवन प्रभु बोल रहे हैं जी।
तो सुंदर केशव प्रभु जी के सानिध्य में मैं भक्ति कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ।
कहाँ पे रहते हैं प्रभु जी?
मैं वाराणसी में रहता हूँ प्रभु जी।
वाराणसी में रहते हैं, ओके।
जी
कितना 16 माला कर रहे हैं
जी प्रभु जी?
अच्छा, अमन प्रभु कहाँ गए? अमन प्रभु कुछ बोलने वाले थे। अमन प्रभु अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
अमन लखवानी लखनवी सॉरी
जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।
वीडियो ऑन कर लीजिए।
वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया।
कोई बात नहीं।
इंदौर से ही हूँ मैं भी।
इंदौर से हैं आप?
जी,
मैंने सोचा आप लखनऊ से हैं, आपके नाम के आगे लखनवी लिखा हुआ, सोचा लखनऊ से हैं।
लखनवी लगाते हैं ना, तो ऐसा बहुत से मतलब सभी बोलते हैं कि लखनऊ से हो गया, लखनऊ से नहीं, लखनऊ से नहीं। वो मैंने उसका इतिहास भी देखा है, पूछा बड़ों से कि क्या है लखनवी का, तो बताया नहीं किसी ने। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले लखनौता निकला था, पहले लखनौता या फिर लखनऊ लगता था, उसके बाद लखनवी लगने लगा।
ओके, तो आप क्या जॉब वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इंदौर में?
जी स्टडी कर रहा हूँ।
कौन से कॉलेज में?
मैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो होलकर कॉलेज है इंदौर में, उसके जस्ट सामने जीएससी में।
जानता हूँ मैं, इंदौर में रहा हूँ एक्चुअली।
जी
ओके,
नाउ कौन है?
जितेंद्र प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु।
प्रभु जी हम बनारस में रहते हैं और यहीं से प्राइवेट जॉब करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा, बीएड किए हुए हैं, शिक्षक के लिए अप्लाई करते रहते हैं और प्रभु जी के सानिध्य में भक्ति करने का कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, कितनी माला करते हैं
प्रभु जी? दो करते हैं अभी तो।
ओके ठीक है।
उदय प्रभु। उदय प्रभु है?
हरे कृष्ण।
अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए जी। आपको लेने नहीं आया प्रभु जी, हमने उनको बोला था कि आप जाइए प्रभु जी को लेके आइए, लेने नहीं आया, उसने अपना मोबाइल ही बंद कर लिया।
प्रभु जी उस दिन हार में मुझे काम आ गया था, पापा के साथ चला गया और फोन यहीं पे रख दिया।
ठीक है भैया, कैसे चल दिया था? कितनी माला कर रहे हैं आप
अभी? प्रभु जी दो और ज्यादा से ज्यादा चार हो पा रही हैं।
ओके,
मतलब दो कॉमन हो रही हैं।
जॉब कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं
अभी? 12th पास की और अब तैयारी कर रहे हैं एसएससी।
एसएससी तैयारी कर रहे हैं। ओके ठीक, अच्छा है, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू।
अर्चना माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं वाराणसी से हूँ, सुंदर केशव प्रभु जी के।
ओके कितना माला चल रहा है प्रभु जी, माता जी?
जी 16 माला करते
हैं। ओह 16 माला, बहुत अच्छा है। घर में सेवा कर रहे हैं भगवान की?
जी प्रभु जी, कभी कभी मंदिर चली जाती हूँ और घर में प्रसाद वगैरह सब वही।
अच्छा है, मेंटेन करिए, 16 माला मेंटेन करिए और शास्त्रों को पढ़िए, गीता भागवत जो भी है। ठीक
है, रश्मि माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी।
प्रभु जी मैं भी बनारस से ही हूँ और प्रभु जी के सानिध्य में कोशिश कर रही हूँ श्री प्रभुपाद के बताए हुए रूल्स को फॉलो करने की। और चैंटिंग भी 16 राउंड हो जाता है, बस थोड़ा सा रीडिंग और लिसनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं अच्छा। हो पा रहा है अभी, कोशिश में कर रही हूँ।
ट्राई करिए आधा घंटे एक घंटे समय निकालने का। आधा घंटे निकालेंगे तो निकल आएगा, आधे घंटे तो समय निकाल सकते हैं।
जी प्रभु जी, हो रहा था थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब हो गया है, बट कोशिश कर रही हूँ कि इसको मेंटेन किया जाए।
ठीक है, कोशिश करिए।
जी प्रभु जी।
ओके
और कोई छूटा है क्या? छूटे हो कोई तो बता सकते हैं, नहीं तो बुरा बन जाए। ठीक है कोई नहीं छूटा लगता है।
ठीक है ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे को फिर देखते हैं इसके आगे ध्रुव महाराज की स्टोरी। श्रीमद भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।